सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को इस पॉडकास्ट में समेटे मैं हाजिर हूं। स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार। एशिया कप का आगाज हो चुका है और सबकी निगाहें कल पर टिकी हैं, जहां भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने होंगे। नतीजा जो भी हो, मुकाबले का रोमांच शबाब पर होगा। इस टूर्नामेंट को विश्व कप से पहले एक रिहर्सल भी माना जा सकता है, जहां सभी टीमों के पास खुद का वजन तरीके से नापने का मौका होगा। पाकिस्तान पहले मैच में नेपाल को रौंद कर शुरुआत कर चुका है, जबकि भारत को इस प्रतियोगिता में कल अपना पहला मैच खेलना है। वो भले ही अहम ना हो, लेकिन इस शेड्यूल का लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में दूसरा मैच खेलने वाला है और भारत को कल शुरुआत करनी होगी। पाकिस्तान नेपाल को हराकर सुपर फोर का दावेदार बन चुका है और भारत को भी वहां पहुंचने में लीग के दो मैचों में से एक ही जीतना होगा। यानी इस मैच के बाद सुपर फोर में भी दोनों की भिड़ंत तकरीबन तय है, और अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो दोनों तीसरी बार फाइनल में भी भिड़ सकते हैं। वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में हो रहा है और इसलिए एशिया कप का प्रारूप भी वही रखा गया है। भारत ने वेस्टइंडीज दौरे पर जब आखिरी वनडे सीरीज खेली थी तो उसे कुछ हद तक संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था, खासकर उस वेस्टइंडीज के खिलाफ जो अगले विश्व कप में अपनी जगह भी नहीं तलाश पाया। वैसे तब टीम में शामिल ज्यादातर चेहरे जुदा थे। लोकेश राहुल का विश्व कप से पहले एशिया कप में वापसी का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आगाज से पहले ही उन्हें दो मैचों के लिए बाहर होना पड़ा। आशंका इस बात की भी है कि वो शायद कोई भी मैच ना खेल पाए। विश्व कप में हालात क्या होंगे, ये अभी से कह पाना मुश्किल है। सवाल ये है कि इतने उपलब्ध विकल्पों में से जो फिट हैं, हम उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला समय से क्यों नहीं ले सकते, और रिहैब से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए पलक पांवड़े बिछाए क्यों बैठे रहते हैं। लोकेश राहुल एक बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन बाकी भी तो कमतर नहीं। बहरहाल भारतीय टीम ने कल अभ्यास किया और आज भी उनके पास इस काम के लिए वक्त रहेगा। सवाल मिडिल ऑर्डर को लेकर है। लोकेश राहुल के बाहर होने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि नंबर 4 और 5 को लेकर लगभग 1.5 साल से टीम की सोच तय है, लेकिन श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के चोटिल होने से संतुलन थोड़ा बिगड़ा है। सवाल यही है कि वो बेंच स्ट्रेंथ कहाँ है, जिसकी चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होती रहती है। एशिया कप के हालात तब्दील होंगे, इस उम्मीद में आखिरी समय तक बैठे रहने से बेहतर है कि विश्व कप के लिए मौजूद विकल्पों को तैयारी के लिए आगाह कर दिया जाए। जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी मजबूत दिखाई दे रही है। बुमराह ने आयरलैंड सीरीज में सुखद वापसी की है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ साथ रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी पर नकेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले एशिया कप में 2 बार भिड़ंत हुई और तब दोनों ने 1-1 मुकाबला जीता था। इस बार फॉर्मेट अलग है और कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार इनकी आपस में भिड़ंत हो सकती है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बाद कल जब दोनों आमने सामने होंगे, तब भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा पाकिस्तानी गेंदबाज ले सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान जैसे गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी को पहले मैच में नेपाल के खिलाफ हाथ खोलने का मौका मिल चुका है। पाकिस्तान ने नेपाल जैसी टीम के खिलाफ अपनी बेस्ट टीम उतारी और मुकाबले को हल्के में नहीं लिया। इससे कल भारत के साथ खेले जाने वाले मैच में उसकी गंभीरता का आकलन किया जा सकता है। कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद के शतकों ने बता दिया है कि उनका बल्ला बोल रहा है। इस मैच को 238 रन के बड़े फासले से जीतकर पाकिस्तान ने अपने इरादों की बानगी दी है। नेपाल के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलकर पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ियों को वार्म अप भी मिल चुका है। पाकिस्तान इससे पहले अफगानिस्तान का भी व्हाइट वॉश कर चुका था। आंकड़ों के नजरिए से अहम ये कि एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत का ये 50वां मैच होगा। भारत के अलावा इस आंकड़े को सिर्फ श्रीलंका की टीम ही पार कर सकी है। दूसरी ओर कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को पहले मैच में 5 विकेट से हराकर शुरुआत की। बांग्लादेश ने नजमुल इस्लाम शांतो के 89 रन की बदौलत 164 रन बनाए और श्रीलंका ने 66 गेंदें बाकी रहते सिर्फ 5 विकेट पर यह टारगेट हासिल कर लिया। सदीरा समरविक्रा के 54 और चरित असलंका के 62 रन की बदौलत श्रीलंका ने बाजी मारी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई अधिकारियों को एशिया कप को देखते हुए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। बीसीसीआई ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। लाहौर में होने वाले डिनर में बोर्ड प्रमुख रॉजर बिनी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला शिरकत करेंगे। इस आमंत्रण की अहमियत यह है कि इससे दोनों बोर्ड्स के भीतर कटुता कम करने में मदद मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी भी कुछ हद तक राहत महसूस करेगी। वनडे विश्व कप को लेकर इस सप्ताह कोई खास उठापटक देखने को नहीं मिली, फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पहली खेप के लिए जारी किए गए सारे टिकट बिक चुके हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप की तैयारी के मद्देनजर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इंग्लैंड ने विश्व कप के लिए अपनी संभावित टीम में विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक को पहले शामिल नहीं किया था, लेकिन अब खबरें मिल रही हैं कि उनको टीम में जगह मिल सकती है। न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन उपलब्ध होंगे या नहीं, इसके लिए अभी 2 सप्ताह और इंतजार किया जाएगा। वो पूरी तरह से फिट नहीं है। इसी तरह बांग्लादेश के इबादत हुसैन अब विश्व कप की दौड़ से चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में अंबाथी रायटू के लिए पहले दौर के मुकाबले ज्यादा सुखद नहीं रहे। इस सप्ताह पहले 2 मैचों में 32 और 15 रन बनाने के बावजूद तीसरे मैच में उनको शामिल नहीं किया गया। ये सभी मैच उनकी टीम सेंट केट्स एंड नेविस पैट्रियट्स हार चुकी है। वैसे अंबाथी रायडू ने कथित निजी कारणों से सीपीएल से अलग होने का फैसला किया है। और अंत में इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। स्मृति मंधाना की टीम सदर्न ब्रेव ने द 100 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में उसने जेमिमा रॉड्रिक्स की टीम नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को पराजित किया। इसमें जहां मंधाना ने केवल 4 रन बनाए, वहीं जेमिमा ने 24 रन का योगदान किया। इससे पहले एलिमिनेटर मुकाबला बारिश के कारण नहीं खेला जा सका, लेकिन जेमिमा की टीम सुपर चार्जर्स को वेल्स फायर के खिलाफ इसलिए विजयी घोषित किया गया क्योंकि अंक तालिका में उनकी टीम बेहतर थी। इस बार हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी टूर्नामेंट में शिरकत की, लेकिन दोनों को नॉकआउट में जगह नहीं मिली। दूसरी ओर काउंटी चैंपियनशिप का अगला चक्र रविवार से शुरू होगा, जिसमें एक साथ चेतेश्वर पुजारा, जयदेव गुनादकट और उमेश यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। डिवीजन 2 में चेतेश्वर और जयदेव ससेक्स के लिए साथ साथ खेलेंगे। ससेक्स का मुकाबला डरहम से होगा, जो इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर है। काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन 1 में उमेश यादव की टीम एसेक्स नंबर 2 पर है और उसका सामना 4 सितंबर से मिडिलसेक्स से होगा। तो ये था हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बैनर्जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।